بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله خزائن السماوات والأرض، آسمانو اور زمین کے سارے کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہوگا. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. کل یوم ہو فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یسألہ من فی السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، سب اسی ایک اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی تمام مخلوقات اسی ایک اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کا انتظام وہ خود اکیلے فرماتے ہیں. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق ہیں اور اللہ ہی ہر چیز کے نگران اور وکیل ہیں. اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے، اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے. سارے کمالات اور خوبیاں اللہ کے پاس، سارے خزانے اللہ کے پاس، ساری مخلوق کے دل اللہ کے سامنے مسخر ہیں. دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ کے دربار میں ہے. قرآن شریف میں لفظ اللہ موتیوں کی طرح آتا ہے، ایک سورے کے بعد دوسری سورے، ایک صفحے کے بعد دوسرا صفحہ، لفظ اللہ موتیوں کی طرح جڑا ہوا نظر آئے گا قرآن شریف میں. کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. جب تک لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ دنیا اور کائنات چل رہی ہے. جب آخری آدمی اللہ اللہ کرنے والا دنیا سے چلا گیا تو قیامت آ جائے گی. زمین کے ہر چپے چپے پر، ہر ٹائم زون میں لوگ کہیں ظہر پڑھ رہے ہیں، کہیں عصر پڑھ رہے ہیں، کہیں اس وقت مغرب پڑھ رہے ہیں، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے. جیسے جیسے زمین گھومتی ہے، دن اور رات کا نظام ہے، ہر جگہ لوگ اللہ کی عبادت، ذکر، قرآن، تسبیح میں لگے ہیں. آسمان کے چپے چپے پر فرشتے عبادت کر رہے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان لفظ ہے اللہ، اور لفظ اللہ دل کے یقین کے ساتھ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا گیا، اور اس کے بعد آپ کو دعا سکھائی گئی، رب زدنی علما، کہ میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے. تو ہمیں علم کی تلاش میں کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ. جب تہجد کے وقت اٹھتے، اس وقت سے لے کر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کے ختم ہونے تک، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ الگ الگ ذکر، دعائیں، تسبیح، تلاوت، پورے دن ذکر میں مشغول رہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ مقید رکھیے, باندھے رکھیے, جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے ان لوگوں کی تلاش میں. دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک حلقہ لگا ہوا ہے, وہاں آپ تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی, جبرائیل علیہ السلام بار بار تشریف لا رہے تھے, قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ براہ راست تربیت فرما رہے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے امور میں مشورہ کیا کیجئے. آپ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نبی معصوم ہوتا ہے, ان کے کوئی گناہ نہیں. اگلے پچھلے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کبھی ہوتی بھی تو وہ سب پہلے ہی معاف کیے جا چکے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن میں استغفار فرمایا کرتے تھے. اور ایک حدیث شریف میں آیا 70 مرہ, کے 70 مرتبہ استغفار, اور کہیں 100 مرہ, 100 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو کتنی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. دین سیکھنے کے لیے ادب اور قلب کی ضرورت ہے, اور بغیر ادب اور قلب کے کسی کو کچھ نہیں ملتا, چاہے وہ پیغمبر کے خاندان میں پیدا ہو جائے. جیسے قصص النبیین میں اور نبیوں کے قصے میں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ محروم رہے, ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی, اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا محروم ہو گیا, اس کو ایمان نہیں ملا, اور لوط علیہ السلام کے گھر والے محروم ہو گئے, اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہ درجہ نہیں ملا جو یوسف علیہ السلام کو ملا, حالانکہ ان سب کے ابا دادا پردادا سب کے سب بڑے عظیم پیغمبر تھے, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام. تو معلوم ہوا کہ سچی طلب اور نیت کے بغیر تو پیغمبروں کی اولاد کو بھی نہیں ملتا. اس لیے دین سیکھنے کے لیے بہت ہی عقیدت, احترام, نیت, ادب, طلب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایمان اور تقویٰ پر نعمتیں ملیں گی. سب سے پہلی بات, نیت کو خالص کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے, یعنی عمل کا اجر و ثواب نیت کے مطابق ملے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث جو نیت کے بارے میں آتی ہے, عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے. اس لیے جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص نیت کے ساتھ ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی, اور جس آدمی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے. تو انما الاعمال بالنیات, اس حدیث کی فضیلت اور اہمیت پر محدثین کا اتفاق ہے, اور بعض علماء اس کو ایک تہائی علم اور بعض اس کو آدھا علم فرماتے ہیں. نیت کا استحضار عبادات اور اعمال میں اخلاص کو بڑھاتا ہے, روزمرہ کے کاموں میں اجر و ثواب لینے کا ذریعہ ہے, اور جو جائز کام انسان کرتا ہے, ضرورت کے کھانا پینا, سونا جاگنا, سفر, کام کاج, اگر اس میں اچھی نیتیں کر لے تو اس کو بھی عبادت بنا سکتا ہے. نیت ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے بغیر کچھ خرچ کیے, بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے, بغیر زبان استعمال کیے اور بغیر آنکھیں کھولے نیکیاں کما سکتے ہیں. چند لمحوں کی توجہ سے سارا دن عبادت میں تبدیل ہو سکتا ہے، جیسے کہ مٹی کو سونا بنا رہے ہوں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، ہمیں اس چیز کی توفیق دیجئے جس کو آپ محبوب اور اچھا سمجھیں، خواہ وہ قول ہو یا فعل یا نیت یا طریقہ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت سے مراد تقرب الی اللہ کا قصد کرنا، جو کام کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور اس کی رضا اور خوشی کی طلب کے لیے کام کرے. نیتوں کو مسلسل یاد رکھنا ریاکاری کو ختم کرتا ہے اور اخلاص کو بڑھاتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. مومن کا ہر لمحہ کسی بھی حال میں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. عبادات کے علاوہ بھی تمام کام اللہ کے لیے ہوں، کھانا پینا، سونا، جاگنا، کمانا، ہنسنا، بولنا، سب اللہ کے لیے. بظاہر یہ کام اپنے نفس کے لیے نظر آ رہے ہیں، لیکن نیت ٹھیک کر کے ان کاموں کو بھی اللہ کے لیے بنا سکتا ہے. بزرگان فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد نیت کرے کہ آج جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے. سورہ انعام میں ایک آیت ہے، اس کا ٹکڑا ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ پڑھ کر دن بھر کے کاموں کو سوچیں اور دعا کریں کہ اللہ، یہ سارے کام صرف آپ کی رضا کے لیے کروں گا. اور جس کام سے پہلے یاد آ جائے تو پھر نیت کو سوچ لیں، تو امید ہے کہ نیت اچھی ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. دین کو پھیلانا، علم دین سیکھنا، سکھانا، اللہ کے راستے میں جانا، حلقے، تعلیم، دروس، لوگوں کو اچھی باتیں، نصیحتیں پھیلانا، چل پھر کر کے کتابوں کے ذریعے، دروس، حلقوں کے ذریعے، اس کام کی کیا نیتیں ہوں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا ہے اور سنت کی اتباع میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور اس عمل کو کرنے کے جتنے فضائل قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں ذخیرہ بنانے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں. اور جتنی سنت دعائیں اس عمل کے دوران ہیں ان کی مشق کے لیے یہ عمل کرتا ہوں. اور اسلام کے جتنے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان شعبوں میں، ان برانچز میں اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اس نیت سے یہ عمل کرتا ہوں. اور تمام گناہ اور لایعنی فضول کاموں سے بچنے کی نیت کرتا ہوں اور اپنی اصلاح کاملہ، میرے اعمال اور اخلاق ٹھیک ہو جائیں، اس کی نیت کرتا ہوں. اور اللہ کی ذات اور صفات اور قدرت کا پورا یقین آ جائے، اس لیے یہ دعوت اور تعلیم کا عمل ہے. اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہو اور پوری امت کی فکر ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتیں پھیلانا اور بری باتوں سے روکنا، ان کے آداب اور حکمت سیکھنے کی نیت. ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم اور ناکامی سے بچا کر کامیابی اور جنت میں پہنچانے کی عمل، تاکہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور اللہ کا کام کہ لوگوں کو، انسانیت کو اللہ کی رحمت اور مغفرت اور اللہ کے وعدوں کا یقین آئے، یہ کام گلی محلوں میں، دنیا بھر میں زندہ ہو جائے. اور یہ نبیوں کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. البتہ اس کام کے لیے میں نااہل ہوں، मेरी समझ और इल्म और ताकत और उस दर्जे की नहीं है जो इस काम में ज़रूरी है। तो खुद नाअहल हूँ और इसके अहल यानी अच्छे लोगों की तलाश में हूँ जो ये काम कर सकते हैं। और हम तालीम और इल्म दीन और सीखना सिखाना इसलिए करते हैं कि हमें खुद नेक आमाल पर इस्तिकामत हो जाए, और दावत, इबादत, खिदमत, तालीम ये हमारे ज़ाती ज़िंदगी में और घरों में, मस्जिदों में, इलाक़ों में ज़िंदा हो जाए, ताकि पूरा का पूरा दीन 100% सुन्नत तरीक़े हमारी ज़िंदगी में आए और दूसरों की ज़िंदगी में आ जाए। तो इसमें तालिब इल्म के भी जितनी नियतें हैं वो आ गई, और दावत तबलीग की नियतें आ गई, और इंसानियत की फ़िक्र आ गई। तो काम तो थोड़ा सा हो, अलबत्ता नियत का सोचना बहुत, जितना ज़्यादा अच्छी नियतें करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं तवाब को बढ़ा देते हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, नेक काम करने की तौफीक, मेरी तौफीक सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। एक आदमी नियत करता है किसी नेक काम करने की, तो उसको अजर व सवाब उसी वक्त मिल जाता है जैसा कि वो काम कर लिया। अब किसी दिन उस काम को उसने पूरा किया तो 10 गुना सवाब, 70 गुना, 700 गुना। कि अच्छी नीयत से एक खजूर सदका दिया तो उसका सवाब बढ़ा के पहाड़ के बराबर कर देते हैं। फिर ख़ास ख़ास ज़माने लाते हैं, रमज़ान का महीना, उसमें अजर व सवाब बढ़ा देते हैं 70 गुना। फिर रमज़ान में भी शबे कदर लाते हैं कि एक रात में 1,000 महीनों का सवाब दे देते। फिर अशरा ज़िलहिज्जा लाते हैं कि जिसमें हर रात शबे कदर की इबादत का बराबर के बराबर, और हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर। फिर ख़ास ख़ास जगहें और रहमतें लाते हैं, जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, जहाँ तालीम होती है, तो यहाँ पर अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। ये जगहें ज़मीन में चमकती हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। जो आदमी इल्म दीन सीखने जाए, फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं, मखलूक दुआएं करती है। कुरान पाक का एक एक हर्फ पढ़ना, उसमें 10 नेकियां। फिर ख़ास ख़ास सूरतों के फजाइल बयान किए गए कि सूरह यासीन एक मरतबा पढ़ लें तो दिन भर के काम आसान हो जाएंगे, और एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने से 10 कुरान का सवाब मिलेगा। और सूरह इखलास कुल हो अल्लाह अहद 3 मरतबा पढ़ लिया तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा, और 10 मरतबा पढ़ लिया तो जन्नत में महल मिलेगा। अल्हाकुम तकासुर, ये सूरह पढ़ ली तो 1,000 आयतों का सवाब मिलेगा। सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें पढ़ ली तो पूरी रात क़ियामुल लैल का सवाब मिलेगा, और शैतान उस घर से फरार हो जाएगा। और यही सवाब सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू और 10 आयात का है। और सूरह हशर के आखिर की 3 आयतें पढ़ी तो 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। सो मोमिन को नेकियों का हरीस होना चाहिए कि अल्लाह के वली वो होते हैं कि एक मरतबा बात बता दी तो ज़िंदगी भर के लिए उसको बांध लिया, उसको डायरी में लिख लिया, उसका कार्ड बना लिया, पोस्टर लिख के दीवार पर लगा दिया, रेफ्रिजरेटर पर लगा दिया, और उसको हमेशा के लिए मामूल में ले आए। इन लोगों को कहते हैं अल्लाह के वली हो गए। तो इस तरह ये इबादात में फजाइल का एक ट्रैक है। फजाइल जिक्र में हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र के बहुत सारे फायदे गिनवाए, 100 से ज़्यादा फायदे बताए। उनमें से कुछ फ़ायदे अल्लाह के जिक्र के, कि अल्लाह का जिक्र शैतान को दूर करता है, उसकी क़ुव्वत को तोड़ता है, अल्लाह की खुशी का सबब है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है जो इस्लाम की रूह और दीन का मरकज़ और नजात का मदार है। अल्लाह का जिक्र दिल से रंज और गम को दूर करता है, दिल में खुशी और फरहत पैदा करता है, जिस्म और दिल को क़ुव्वत देता है, चेहरे और दिल को नूरानी करता है। अल्लाह का जिक्र एहसान के दर्जे तक ले जाता है, ऐसी इबादत नसीब होती है जैसे अल्लाह को देख रहे हैं। और अल्लाह का कुर्ब पैदा करता है, अल्लाह की मार्फत का दरवाज़ा है, दिल की वहशत को दूर करता है। जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह ताला हमें याद फरमाएंगे, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह का जिक्र दिल और रूह का रिज़्क़ है, ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी, और दिल को जंग से पाक करता है और गलत ख्वाहिशात और गफलत की सफाई करता है, गुनाहों और खताओं को दूर करता है। जो जिक्र बंदा करता है वो अर्श इलाही के चारों तरफ जाकर बंदे का जिक्र करते हैं, फरिश्ते जिक्र करने वाले को घेर लेते हैं, और जो इंसान खुशी में अल्लाह को याद रखे, अल्लाह ताला मुसीबत के वक्त उसको याद रखते हैं। बड़े बड़े फजाइल, इसलिए सुबह शाम की तस्बीहात, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम, और इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ, ये तो इब्तदा है कि ये तस्बीहात जिसको वक्त है फजर के बाद मुसल्ले पे पढ़ लें, उसको वक्त नहीं मिला चलते फिरते काम काज करते पढ़ लें, तो 10-15 मिनट में ये तस्बीहात हो गई। जिसको मौका है शाम को असर के बाद मगरिब के बाद फिर पढ़ लें, और इसके अलावा कुछ और अज़कार औरात वज़ाइफ़ भी मुकर्रर करें जिनको फ़ज़ाइल की किताबों में या मुस्तनद किताबों में या किसी शुयूख से उनको अपनी ज़िंदगी में लाएं। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम 7 मरतबा जो पढ़ेगा तो दिन भर के काम आसान हो जाएंगे, बड़े बड़े मुश्किल काम अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये तमाम सगीरा गुनाहों का कफ़ारा अगरचा वो समुंदर के झाग के बराबर हो, तो 3 मरतबा ये इस्तिग़फ़ार सुबह शाम पढ़ना चाहिए। इस तरह अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ना चाहिए, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ले शयइन कदीर, ये 10 मरतबा सुबह और शाम पढ़ना चाहिए। और इसी तरह का चौथा कलमा अगर बाजार में पढ़ा तो 10 लाख नेकियां मिलेंगी और 10 लाख गुनाह माफ़ होंगे। और सुबह शाम हिफाजत की दुआएं मांगी जाएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यगुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वह हुवा समीउल अलीम 3 मरतबा सुबह और शाम, और 3 कुल 3 3 मरतबा सुबह और शाम पढ़कर दम किया जाए, और सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए, और सूरह हशर की आखिर की 3 आयतें पढ़ी जाएं, और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही रिबा नफ्सिही वज़नत अर्शिही मिदाद कलिमातिही, ये कलिमात 3 मरतबा कोई पढ़ ले सुबह शाम तो कई घंटे की नफिल इबादात का सवाब मिलेगा। और तमाम मुसलमानों के लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, तो दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सब की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा, और 1.5 अरब मुसलमान हैं तो इतनी नेकियां 5 सेकंड में मिली। तो अपनी ज़बान को इन कामों में मशगूल रखना, तो नियत का दिल के साथ ताल्लुक़ और ज़िक्र ज़बान के साथ। आगे ज़िंदगी को पलटने के लिए यकीन और तौहीद और तवक्कुल, इसका मज़मून है जो इसके लिए लोग ज़िंदगी भर मेहनतें करते हैं। देखो, जादूगर का किस्सा और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक में कई जगह आता है। जादूगर आए, उन्होंने लाठियां डाली, वो सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने एक लाठी डाली और वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया और सारे सांपों को निगल गया। ये किस्सा बार बार आता है कुरान में। तो इस किस्से में जो सीखने की बात है वो ये है कि जब जादूगर आए तो वो तो मुखालिफ थे, लड़ने के लिए आए थे, और चंद मिनट पहले फिरौन उनसे बड़े बड़े वादे कर रहा था, अगर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे दी तो हमें क्या मिलेगा। तो फिरौन ने बोला कि हम तुम्हें मुकर्रब बना लेंगे, बड़े बड़े इनामात देंगे। और चंद लम्हों में जब उन्होंने मोजज़ा देखा मूसा अलैहिस्सलाम का, तो सब जादूगर उनकी काया पलट हो गई। यू टर्न हो गई जिंदगी में, बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ गए। ये लोग ना किसी स्कूल को गए, ना इन्होंने उस वक्त पूरी किताबें पढ़ी, ना वो लंबी चौड़ी तालीम सुनी, लेकिन उनकी दिल की दुनिया पलट गई और सब के सब सजदे में गिर गए और कहने लगे कि भाई आमन्ना बे रब्बे मूसा व हारून, हम तो मूसा और हारून के रब पर, अल्लाह पे ईमान ले आए। तो फिरौन बड़ा नाराज़ हुआ कि भाई मैं तो तुम्हें लाया था मूसा अलैहि सलाम से लड़ने के लिए और तुम उनकी पार्टी में चले गए, ऐसा क्या? उसने कहा अब मैं तुम्हें सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारे एक तरफ के पैर काटूंगा, दूसरी तरफ के हाथ काटूंगा और तुमको लटका दूंगा फांसी पे। तो जादूगरों पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। कहने लगे कि फक बेमा अन तकाब, सूरह ताहा में कर ले जो करना है, हम तो वापस नहीं आते। तो मालूम हुआ ये ईमान, तौहीद, तवक्कुल, ये ऐसी चीज है कि ये इंसान की काया पलट कर देता है। उमर रदी अल्लाह अन्हो घर से निकले जमाने जाहिलियत में और तलवार लेकर चले जा रहे थे, और कि खुदा ना खास्ता, नाउज़ु बिल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें। और रास्ते में कुरान की बरकत से, अपनी बहन के घर में तालीम की बरकत से, और अल्लाह के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, उस दुआ की बरकत से उमर रदी अल्लाह अन्हो की काया पलट हो गई, बिल्कुल यू टर्न हो गए। और उसके बाद तो ऐसा ईमान ले आए कि अशरा मुबशरा में से हो गए, और कुरान पाक की कई आयात आपकी मंशा के मुताबिक नाजिल हुई बाद के ज़माने में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर रदी अल्लाह अन्हो अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो के बराबर में दफन है, और 14 सदियों से सलाम पेश किया जा रहा है, और अल्लाह ने उनको एक बड़ी ज़मीन के इलाके में उनको हुकूमत भी अता फरमाई और मकाम तस्खीर अता फरमाया। तो घर से चले थे किस नीयत से और हो गए क्या, ये यकीन सीखने की बात है। तो इसलिए मेहनत की जाती है अल्लाह के वादों का यकीन, कि कुरान शरीफ में जो अल्फाज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में जो वादे हैं अहादीस शरीफा में, वो सब के सब हक हैं, सच हैं। मेरे अंदर जितनी तवज्जो होगी, तलब होगी, यकीन होगी, उतना अल्लाह का मेरे साथ मामला होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को अल्लाह का हुक्म था, हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको मक्के की वादी में, एक रेगिस्तान में छोड़ आए, और उस वक्त ना कोई पानी था वहाँ, ना सब्जा था, ना बाग था, ना खाने पीने की चीज़ें थी, ना अस्पताल, ना फार्मेसी, ना स्कूल, ना सड़क, ना वहाँ कोई लोग रहते थे। वो तो पहाड़ और गर्मी और रेगिस्तान, वहाँ तो कोई घास का पत्ता भी नहीं था, और अल्लाह का हुक्म था। तो जब अल्लाह का हुक्म पूरा किया और कुर्बानी दी और तौहीद, तवक्कुल, तकवा के साथ, अल्लाह के वादों के यकीन के साथ उस पर जमे रहे, तो फिर अल्लाह ने वो पूरा निज़ाम तब्दील कर दिया। तो मक्का का शहर आबाद हो गया, लाखों करोड़ों लोग हज को आ रहे हैं, उम्रे को आ रहे हैं, अब शहर में जगह नहीं मिलती, ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, दूर दूर से जाना पड़ता है, इतनी बसें चल रही हैं, वो पहाड़ों के बीच में एक अजीब दुनिया अल्लाह ने बना दी, और जमजम का पानी निकाल दिया कि अब लाखों करोड़ों आदमी उसको पी रहे हैं, ख़त्म ही नहीं होता। तो मालूम हुआ कि जब आदमी अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा उठाना चाहे, तो अल्लाह के वादों के यकीन के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करे। फिर देखो अल्लाह ताला किस तरह ज़मीन आसमान का निज़ाम तब्दील कर देते। तो लोगों के छोटे छोटे मसाइल, बड़े बड़े मसाइल, उनका हल ये है, सही यकीन का आ जाना, सही यकीन का आ जाना कि अल्लाह पाक हर हाल में, हर चीज़ में, हर चीज़ पर कादिर है। और ये यकीन दुनिया में अल्लाह के ख़जाने से सारी ज़रूरत पूरी करेगा। सही यकीन वाला इंसान आमाल को दौड़ता है, हाँ जी बताओ क्या करना है। गलत यकीन वाला इंसान चीज़ें जमा करने को दौड़ता है, चीज़ें जमा करो, असबाब जमा करो, वहाँ पे कामयाबी है नहीं। तो यकीन और हिदायत का नूर जब दिल में दाखिल होगा, तो उसकी कुछ निशानियां हैं। धोखे के घर से दिल उचाट हो जाना, हमेशा के रहने के घर की तरफ, आखरत की तरफ मुतवज्जा हो जाना और अल्लाह से मुलाकात की तैयारी में लग जाना। जिस आदमी का यकीन पलट गया, हर नेकी की तरफ ऐसा दौड़ेगा जैसे बहुत अच्छे खाने बिरयानी की तरफ आदमी दौड़ता है, और हर बुराई से ऐसा भागेगा जैसे सांप बिच्छू और आग से भागता है। क्या हुआ ये? यकीन पलट गया इसका। ऐसा हो सकता है कि सूरज निकला हुआ हो और गर्मी रोशनी नहीं हो रही हो, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बर्फ पड़ी हुई हो और सर्दी नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ईमान और अमल सालेह हो और कामयाबी ना हो। वहाँ कामयाबी ज़रूरी है और मिलेगी अल्लाह से। तो मालूम हुआ कि जहाँ पर कमी है तो वो अपने ईमान में कमी है। तौहीद, तवक्कुल, तक्वा, इखलास, नीयत ठीक नहीं है या आमाल कमज़ोर हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें ठीक कर लें तो फिर तो वादा है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो वादा गलत नहीं है। हमारे अंदर कुछ कमी है और यही मकसद है इल्म का और तालीम का और दावत का, कि ये दिल की दुनिया को पलटो। इसलिए बुजुर्ग दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह ईमान और यकीन से हमारे दिलों को मालामाल कर दीजिए। आमीन। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज नसीब फरमाइए जो आपके यहाँ से अता और बख्शिश के दरवाजे खोल दे। आमीन। ऐ अल्लाह इल्म नाफे अता फरमाइए, अपना धुन अता फरमाइए, अपना ध्यान नसीब फरमाइए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया से भरपूर हिस्सा अता फरमाइए, वैसे अखलाक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, और ऐसी ज़िंदगी अता फरमाइए जिससे आप राज़ी होते हैं, और ऐसी ज़िंदगी से हिफाजत फरमाइए जिससे आप नाराज़ होते हैं। ऐ अल्लाह बंदगी की तौफीक अता फरमाइए, और ऐ अल्लाह आपके दीन पर जमे रहें और दूसरों को जमाते रहें, और जब दुनिया से जाएं तो कामिल ईमान पर हमारा खात्मा हो। ये है मकसद ज़िंदगी, इसीलिए बुजुर्गान दुआ किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत किसको मिले, ये गुज़िश्ता के ही हफ्तों से मज़मून पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत मांगने की एक दुआ, ये मजमुउ ज़वायद में है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एहतमाम फरमाया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तुबारिक ली फी नफ्सी व फी समई व फी बसरी व फी रूही व फी खुलुकी व फी खलीकती व अहली व फी महयाया व फी ममाती। अल्लाहुम्मा वसक्किल हसनाती व अस्अलुका दरजातिल उला मिनल जन्ना। आमीन। ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मेरी जान, कान, आँख यानी बसारत, रूह, पैदाइश, सीरत, कुंबा, ज़िंदगी और मौत में बरकत अता फरमाइए। कि ऐ अल्लाह मेरी नेकियों का पलड़ा भारी कर दीजिए और मैं आपसे जन्नत के ऊंचे दर्जात का सवाल करता हूँ। तो इस दुआ में रूहानी, जिस्मानी, अहलो आयाल और तमाम चीज़ों में बरकत के लिए मांगा गया है। बरकत किसको मिले, उसका खुलासा जो मुख्तलिफ मजामीन पहले पढ़े गए हैं, तकवा वालों को बरकत मिलेगी, इस्तिग़फ़ार करने वालों को बरकत मिलेगी, तवक्कुल करने वालों को बरकत मिलेगी, हलाल कमाने वालों को बरकत मिलेगी, खरीदने और बेचने में सच्चाई का मामला करेंगे तो बरकत होगी, सुबह के वक्त उठ के काम में लग जाएंगे तो सुबह के वक्त में बरकत है। हर काम से पहले उसके मुकम्मल तफसील, तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना, मशवरा करना, इस्तिखारा करना, बड़ों से पूछना, इसमें बरकत होगी। खर्च में, अपने काम काज में एतदाल करना, वालदेन और रिश्तेदारों से ताल्लुकात, सिला रहमी, खिदमत और मेहमान की खिदमत, इन चीज़ों से बरकत मिलेगी। और बेबरकती कहाँ से होगी? उसका खुलासा है, दीन फैलाने की मेहनत छोड़ देना बेबरकती होगी, नमाजों को जाया करना बेबरकती, गुनाह नहीं छोड़ना बेबरकती, नाप तौल में कमी करना, हराम माल का इस्तेमाल बेबरकती, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए बेबरकती, खाना जाया कर दिया, बर्तन नहीं धोए बेबरकती, इसराफ और फजूल खर्ची में पड़ गए बेबरकती। तो हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और बरकत लाने की दुआ भी करें और अपनी ज़िंदगियों को ठीक करें। हर दिन के शुरू में बरकत की दुआ मांगना, ये अबू दाऊद में है और मुनाजात मकबूल में पीर की मंजिल के शुरू में ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़ल यौम व फतहु व नसरहु व नूरहु व बरकतहु व हुदा। ऐ अल्लाह, मैं आपसे इस दिन की भलाई, इस दिन की फतह, इस दिन की मदद और नुसरत और इस दिन का नूर और इस दिन की बरकत और इस दिन में हासिल होने वाली हिदायत मांगता हूँ। हर चीज़ मांग ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक यानी कलिमात कि इंसान कितना सोचे इससे अच्छी दुआ नहीं मांग सकता। इस दिन की भलाई भी मांगता हूँ, फतह, नुसरत, मदद, नूर, बरकत और हिदायत मांगता हूँ, सब मांग लिया। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना, सूरह नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़ैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा। जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो कि मुलाकात की बाबरकत पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। सलाम के कलिमात ये अबू दाऊद शरीफ में है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक दुआ है कि तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, बरकतें हों। एक मर्तबा भी किसी मुखलिस मुसलमान का सलाम और दुआ हमारे हक में कबूल हो जाए तो दुनिया आखरत की कामयाबी मिल जाएगी। ये एक बहुत जामे दुआ है कि उसके कबूल होने से रहमतें बरसेंगी, बरकतें नाजिल होंगी, उम्र में, वक्त में, औलाद में, माल में, हर चीज़ में बरकतें होंगी। कि दीन में हमें क्या क्या चाहिए? हमें तो सलामती चाहिए, सेहत, सलामती, अमन, चैन, हर खौफ से अमन, हर फितने से हिफाजत, शुरूर से, आफात से, मुसीबतों से, एक लंबी लिस्ट है, इनसे सलामती चाहिए। या सलाम, तो सलाम में आ गया ये। और उसके बाद रहमतें ही रहमतें चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से, और उनका एक अलग बयान है अल्लाह की रहमतों का। और बरकतें ही बरकतें चाहिए, जो चीज़ मौजूद है कलील, थोड़ी सी चीज़ काफ़ी हो जाए, वक्त में बरकत हो जाए। तो जिसको सलाम और रहमत और बरकतें मिल गईं तो सब मिल गया। इसके लिए एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी अस्माईना व अबसारिना व कुलूबिना व अजवाजिना व दुर्रियातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम व जअलना शाकिरीना लिनिअमतिका मुस्नीना बिहा काइलीहा व अतिम्महा अलैना। मौजम कबीर में ये दुआ है, ऐ अल्लाह, हमारे कानों में और आँखों में और दिलों में और जोड़ों में, हमारी औलाद में बरकत अता फरमाइए और हमारी तौबा कबूल फरमाइए। बेशक आप तौबा कबूल फरमाने वाले मेहरबान हैं। हमको अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बनाइए, अपनी तारीफ़ करने वाला बनाइए, उन नेमतों का इकरार करने वाला बनाइए और उन नेमतों को हम पर कामिल कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह ताला तमाम दुआओं पर और बरकतों वाली ज़िंदगी पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। एक रिसाला है, ये हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनके मलफूजात में से लेकर उनके शागिर्द और ख़लीफ़ा शेख मोहम्मद इकबाल सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुहू, उन्होंने ये रिसाला लिखा है, उम्मुल अमराज। देखिए, आदमी ने नियत भी ठीक कर ली, तौहीद तवक्कुल में लगा, इबादात में लगा, नेक कामों में दौड़ा, दुआओं में भी दौड़ा, नफली कामों में भी बहुत मेहनत की, उसके बाद भी नफ्स में कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है और नफ्स इंसान को पटख देता है। शैतान तो पहले ही लगा हुआ है, और नफ्स की कोशिश होती है कि जो दीनदार तबका है, जो आदमी दीन की कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ डालो। तो इसके लिए इन मलफूजात का मुताला बहुत मुफीद है। इसमें हजरत ने कुछ मलफूजात लिखे, फरमाया, बंदे का कमाल और मर्तबा और तमाम इबादात का असली मकसूद ये है कि बंदे की नजर हर काम में अल्लाह ताला की तरफ ऐसी हो जैसे फकीर भीख मंगा साइल होता है। क्या समझे? बहुत अहम मजमून है, इसको लिखकर पोस्टर बना के दीवार पर लगा ले, खास तौर से दीनदार तबका। बंदे का कमाल और मर्तबा और तमाम इबादात का असली मकसूद ये है कि बंदे की नजर हर काम में अल्लाह ताला की तरफ ऐसी हो जैसे फकीर भीख मंगा साइल होता है, और बंदे की पस्ती और नाकामी और हलाकत इसमें है कि अपने नफ्स की तरफ मुतवज्जा हो और अपने अमल को पसंद करे और अपने फेल को अच्छा जाने और अपनी कदर उसके दिल में हो, ऐसा बंदा अल्लाह के दरबार से मर्दूद होता है। अल्लाह, इसके अंदर उजुब और किब्र का इलाज है। जो आदमी जिक्र अस्कार और दीन के काम करना शुरू किया, अब शैतान आके उसके अंदर दिल में गड़बड़ डालेगा। तो फरमा रहे हैं कि ऐसा समझो कि मेरा नफ्स मजमुआ है तमाम शुरूर और नकायस का, और सर से पैर तक मैं ऐब और नुकसान हूँ, और अपनी खूबी और कमाल का भूल कर भी वहम और शुबा नहीं होता तो ये आदमी कामिल है, ये आदमी पहुंचा हुआ है। काम तो खूब करता है लेकिन समझता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ और मेरे अंदर बड़े अभी डिफेक्ट्स और नुक्स मौजूद हैं, अल्लाह ही रहम फरमाए तो मेरा काम होगा, तो ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है। और जो आदमी उलूम में जाहिरा का माहिर हो लेकिन अपने हाल और नफ्स से राजी हो और उसको पसंद करता हो, तो समझ लो कि ऐब और गफलत और मासियत की जड़ इसके अंदर मौजूद है। यानी अपनी तहकीकात और अपने हाल को पसंद करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये ऐन गफलत है, और इस मर्ज की हकीकत ही अपने हाल को पसंदीदगी की नज़र से देखना है। ये मज़मून बहुत ऊंचा है और इसको समझने की भी ज़रूरत है। हम अपने पास बैठने वाले हर मुसलमान से अपने आप को कम समझें, अगरचा वो मुसलमान बदहाली में कैसा ही इंतहा को पहुंच गया हो। यानी अपने आप को हर दूसरे आदमी से कमतर समझो, इसमें तवाज़ो आएगी। फरमाया कि बंदे की तरफ अब्दियत का कोई दर्जा उस वक्त तक मंसूब नहीं हो सकता जब तक कि अपनी तमाम ताआत को रिया और तमाम हालात और कैफियात को झूठे दावे ना समझे। यानी काम तो खूब करे लेकिन डरता रहे, खूब डरता रहे। और इन्हीं चीज़ों की इस्लाह के लिए शेख की ज़रूरत होती है। इसमें आगे मज़मून बयान फरमाया कि फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियां हैं और कोई भी ऐब नहीं है, और दूसरे आदमी में कोई खूबी नहीं है बल्कि तमाम अयूब हैं। जब भी तुम अपने आप को उससे अफजल नहीं समझ सकते कि आमाल का एतबार खात्मे से होता है, तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारा खात्मा इन्हीं आमाल पर होगा या तकदीर में कुछ और ही लिखा है। और क्या उजुब है, क्या अजीब है कि जो आदमी इस वक्त सरापा गुनाह नजर आ रहा है उसका खात्मा अच्छा हो जाए और तुमसे मर्तबे में बढ़ जाए, और अल्लाह ताला इस पर भी कादिर है कि नेक आमाल की तौफीक तुमसे वापस ले ले और दूसरे आदमी को दे दे। तो बड़ाई और अजमत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, बंदे को आजजी में ही नजात है और तवाज़ो असल इबादत है। बंदे को आजजी में नजात है और तवाज़ो اصل عبادت ہے. اور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے کہ دوستو میں نے اپنی جان کھپا دی اور کوئی راستہ ایسا نہ چھوڑا جس کو طے نہ کیا ہو، اور صدق نیت اور مجاہدے کی برکت سے اس کا صحیح راستہ ہونا معلوم نہ کر لیا ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور ذلت اور انکساری والوں کے اخلاق پر چلنے اور سراپا حیرت اور احتیاج بننے سے زیادہ کسی راستے کو بہت قریب اور زیادہ روشن اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں پایا. صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ عاجزی کے سوا کچھ نہیں بنایا، کیونکہ عاجزی تو ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے کہ انسان تو سر سے پیر تک عاجز ہے، اگر کوئی اور طریقہ اللہ تک پہنچنے کا ہوتا تو مشکل پڑ جاتی. اللہ کے پانے سے اپنی عاجزی اور کمزوری کو سمجھ لینا ہی اللہ کو پا لینا ہے. معلوم ہوا کہ نفس کی اصلاح بہت نازک راستہ ہے، ایسا جیسے کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہو. اس لیے اس کی مثال ایسی ہے کہ راستہ اندھیرا ہے اور راستے میں پھسلن ہے اور اندھیرا ہے اور آنکھوں پر غفلت اور خواہشات کی پٹی پڑی ہوئی ہے اور پیچھے سے شیطان اور نفس اور دنیا دھکے دے رہی ہے کہ میاں تیز جاؤ، ہلکے ہلکے کیوں چل رہے ہو. اب ایسا آدمی ہر جگہ گرے گا. اس لیے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے نفس پر کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. اور ابھی جو مضمون پڑھا گیا کتاب میں سے، تو معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، سارا گھر اور محلہ اور مسجد والے اور شہر والے اور ساری دنیا کے مسلمان مجھ سے بہت اچھے ہیں. اور حکیم الامت فرماتے تھے کہ میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے فی الحال کم تر ہوں، ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے. اور آگے فرماتے تھے کہ کافروں اور جانوروں سے بھی فی المعال کم تر ہوں، کیونکہ معلوم نہیں بعد میں ان کا انجام کیا ہوگا، ابھی میرا انجام تو سامنے نہیں آیا. دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھنا اور دوسری آنکھ سے اپنے عیوب کو دیکھنا. تو آج کے اس درس میں، اس کلاس میں جو بات بتائی گئی، نیت کو درست کرنا اور اعمال میں لگنا ان کے فضائل کے دھیان کے ساتھ، توحید، توکل، یقین پر محنت کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اور یہ جو عجب اور کبر اور غصہ اور غیبت اور بدگمانی، اس لائن کے جتنے امراض ہیں ان سب کو ٹھیک کرنا، دل کو صاف کرو. اس کے بعد آگے جہاں جانا ہے، دنیا آخرت، اس کی فکر میں لگنا کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی، حدیث شریف میں آیا کہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی دریا کے کنارے ہو یا سمندر کے کنارے اور پانی میں ایک انگلی ڈبو کر دیکھے کہ کتنا پانی لگتا ہے. تو پوری دنیا اور اس کی چیزیں اور خوشی اور غم، یہ تو ایک قطرہ ہوا، اور آخرت جو آنے والی ہے وہ تو ایک سمندر کی طرح ہے کہ جب انسان آخرت میں داخل ہوگا اور دنیا کی زندگی سے اس کا موازنہ کرے گا، کمپیئر کرے گا، تو یہاں پر 60, 70, 80 سال کی عمر ہے اور وہاں پر تو ہمیشہ، فار ایور، ایٹرنیٹی، لامتناہی. اور قیامت کے میدان میں جب پہنچا، وہاں پر دیکھا کہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے. یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اگر اچھے صحیح دین پر محنت کرے تو وہی وقت مومن مومنہ کے لیے کم کر دیا جائے گا. اور دنیا کی زندگی اگر 50,000 سال سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو 2.5 منٹ کی زندگی تھی. اور اگر زمین کی عمر دیکھی جائے، 5,000 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، 10,000 سال سے رہ رہے ہیں، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، تو اس کے معلوم ہوا کہ زمین کی عمر بھی اتنی نہیں تھی. تو دن کے پانچویں حصے میں صبر کر لیتا تو آگے پورے دن عیش ہی عیش کرتا. تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، وقت کا حساب کتاب، صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، जो दुनियावी जिंदगी में इसको कर लेगा उसको आखिरत में सआदत मिलेगी, और जब जन्नत में जाएगा तो वहां पर तो रोशनी और घड़ी सब आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। 20,000 साल किसी बाग में तफरी करो, 50,000 साल महल में ऐश करो, जन्नत में सारी ख्वाहिशात पूरी की जाएंगी। तो खुलासे के तौर पे ये हुआ कि तमाम दुनिया में जाओ और उसकी खूबसूरतियां जमा करो, और तमाम दुनिया के जेवरात और हीरे मोती जमा करो, और तमाम दुनिया के लजीज खाने और पकवान जमा करो, और दुनिया के अच्छे कीमती मलबूसात रंग बिरंग के कपड़े जमा करो, और दुनिया भर के महल और कालीन और फर्नीचर और सूफे, और फिर दुनिया भर के लोगों की खुशियाँ ऐश और तफरीह पूरी दुनिया जमा कर ली। तो कितना वक्त उसको उसमें तफरी और इंजॉय कर सकते हैं? मालूम हुआ कि वक्त तो बहुत ही कम है, थोड़े वक्त के बाद ये सब छोड़ के जाना है, और आखरत हमेशा के लिए। तो दुनिया की चीज़ें फिर भी कम हैं, बहुत छोटी और मुख्तसर हैं, और उसके मुकाबले में आखरत की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जो मांगेंगे वो मिलेगा, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा, और दुनिया की चीज़ों की क्वालिटी आम है, मामूली क्वालिटी है, क्योंकि अभी आँखों ने आखरत को देखा नहीं है। आखरत की चीज़ों की क्वालिटी उन्हीं चीज़ों की, आखरत का जेवर, आखरत का कपड़ा, आखरत का हीरा, आखरत का खाना, क्योंकि अभी देखा नहीं है, वहाँ क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, दुनिया की किसी चीज़ का मुकाबला ही नहीं है। दुनिया की चीज़ सैंपल के तौर पे है, दुनिया के चेहरे, दुनिया के फूल, दुनिया के खाने, दुनिया का शहद, ये तो नाम है, वही वर्ड है डिक्शनरी में, लेकिन आखरत की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर बुजुर्गान इस मज़मून से फरमाते हैं, ये बहुत अहम मज़मून है, कि इखलास और अमल सालेह पर आखरत में जिस अजर व सवाब का वादा है, दुनिया में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नेकियों के असल अजर व सवाब का तो ये दुनिया बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, वहाँ की खुसूसी नेमतों की बर्दाश्त कहाँ से है? मिसाल के तौर पर ये समझिए, कुरान शरीफ में सूरह आराफ में कहीं पर जो किस्सा आता है, मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाइश की कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि तुम दुनिया में कहाँ देख सकते हो, अलबत्ता चलो ये इस पहाड़ की तरफ देखो। जब अल्लाह ताला ने उस पहाड़ की तरफ तजल्ली फरमाई तो पहाड़ जैसी सख्त मखलूक रेजा रेजा हो गई, एक तजल्ली की ताब नहीं ला सकी, और मूसा अलैहि सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर एक तजल्ली की ताब नहीं ला सके, बेहोश होकर गिर गए। यहाँ से ये समझ लिया जाए कि जब आखरत की चीज़ें जाहिर होंगी, मिसाल के तौर पे पहले ये समझें कि जब जहन्नम का अजाब दिखाया जाएगा तो एक आदमी एक झलक जो जहन्नम की देख लेगा तो पूरी जिंदगी का ऐश और आराम उसके दिमाग से मिट जाएगा। वो कहेगा मेरे अल्लाह, मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी कोई खुशी पाई नहीं। उसकी लंबी तशरीह है, हदीस है उसकी। अगर आखरत की नुकसान देने वाली एक चीज इस दुनिया में आ जाए, मसलन एक सांप या बिच्छू, अल्लाह बचाए, तो सारी दुनिया उसके जहर की तेजी से खराब हो जाए, कि भाई एक बिच्छू आखरत का दुनिया में आ गया था। अगर एक किनारे से पत्थर फेंकें तो 70 बरस तक जहन्नम में गिरता रहेगा, इतनी बड़ी जगह है। लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, कि ऐसी बड़ी जगह नाफरमान लोगों से भर दी जाएगी, अल्लाह बचाए। और अगर दुनिया के पहाड़ लेकर वहाँ जहन्नम की आग में डालें तो वो तो एक पानी के बुलबुले की तरह पिघल कर बह जाएंगे, और जहन्नम का एक कतरा जकूम का अगर इस दुनिया में जाहिर हो जाए तो खाने पीने की तमाम चीज़ें खराब हो जाएं, कोई चीज़ खाने को ना मिले। ये तो जहन्नम का हाल हुआ, अल्लाह बचाए। अब इसके मुकाबले में जन्नत की नेमतें अगर दुनिया में भेज दी जाएं तो इंसान खुशी से मर जाए, ये मुकाबला है कि जन्नत की नेमतें अगर इस दुनिया में भेज दी जाएं तो खुशी से इंसान बेचारा मर ही जाए। तो मालूम हुआ कि आखरत की चूंकि देखा नहीं है, लेकिन ईमान बिल गैब कि भाई उसकी बातों को सोचो, उसकी तालीम करो, जितना आखरत का गम करोगे दुनिया का गम निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इब्ने अभी दुनिया की रिवायत है, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह के पास ताबईन में सिमाक रहमतुल्ला अलैह आए और उन्होंने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह से पूछा कि जन्नत की ज़मीन कैसी है। इरशाद फरमाया कि चांदी की, जैसे सफ़ेद संगे मरमर की तरह है, गोया के आईने की तरह। मैंने पूछा जन्नत में रोशनी कैसी होगी, फरमाया कि जैसे सूरज निकलते वक्त जो सुबह के वक्त होता है उस तरह रोशनी होगी, लेकिन जन्नत में सूरज नहीं होगा ना ही सर्दी होगी। मैंने पूछा उसकी नहरें कैसी होंगी, फरमाया कि वो जन्नत की ज़मीन पर चलेंगी, खूब बहेंगी, लेकिन इधर उधर नहीं बहेंगी, अल्लाह उनको फरमाएगा कि हो जाओ, वो नहरें बन जाएंगी। मैंने पूछा जन्नत के जोड़े कैसे होंगे, फरमाया उसमें एक दरख्त होगा, उसमें अनार की तरह फल होंगे, जब अल्लाह का वली उसमें से जोड़ा चाहेगा उसकी तरफ उसकी टहनी और शाख झुक पड़ेगी और उसमें से 70 यानी बहुत सारे रंग बिरंग के जोड़े निकलेंगे, फिर वो दरख्त की शाख आपस में मिलकर वैसे ही हो जाएगी जैसा इससे पहले थी। बुखारी और तिरमिज़ी में है, अनस रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है, उसके साए में कोई सवार यानी घोड़े पर सवार 100 बरस तक चलता रहेगा यानी दौड़ता रहेगा, फिर भी एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। तुम अगर चाहो तो अल्लाह का इरशाद पढ़ लो, वगिल्लिम ममदूद, और लंबा साया, व मा इम मस्कूब, बहता हुआ पानी। तिरमिज़ी और निसाई और इब्ने माजा और बुखारी और मुस्लिम, इतनी सारी किताबों में रवायतें हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार की हैं जिनको किसी आँख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी इंसान के दिल में कभी उसका ख्याल भी आया। अगर तुम चाहो तो कुरान की आयत पढ़ो, वगिल्लिम ममदूद, लंबा साया होगा, और जन्नत में एक कोड़े की जगह, थोड़ी सी जगह, दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। इस मज़मून की एक से ज़्यादा रवायतें हैं। तिरमिज़ी की रवायत है, जन्नत में जो भी दरख्त है उसका तना यानी उसकी लकड़ी सोने की है। और इब्ने हब्बान की रवायत है कि जन्नत के खजूर के दरख्त के तने सब्ज जुमुर्रद के हैं यानी एमराल्ड, और उसकी मोटी और चौड़ी जड़ सुर्ख सोने की है, और उसकी शाख उसमें जन्नतियों के कपड़े निकलेंगे, और उसमें छोटे कपड़े भी होंगे, पूरे जोड़े भी होंगे, उसके फल बड़े बड़े डोल और मटके की तरह है, बहुत बड़े बड़े फल हैं, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठे और मक्खन से ज़्यादा नरम। और मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत में है कि अहले जन्नत की ज़बानों पर अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तस्बीह और तकबीर इस तरह जारी होगी जिस तरह सांस जारी होता है। और तिब्रानी की रिवायत में है कि सबसे कम दर्जे का जन्नती उसके सरहाने, उसके बिस्तर के पीछे 10,000 खादिम खड़े होंगे, हर खादिम के साथ 2 प्याले, एक चांदी का एक सोने का, हर प्याले में अलग किस्म की नेमत जैसी दूसरे प्याले में नहीं होगी, और उसमें जो लज्जत और मज़ा होगा वो पहले वाले खाने में नहीं होगी। बरकतें ही बरकतें, हर प्याले में ऐसी नेमत जो दूसरे में नहीं है। और इब्ने अभी दुनिया की रिवायत है कि जन्नत के जिस परिंदे के खाने की ख्वाहिश होगी वो परिंदा उसके हाथ में पका हुआ टुकड़े होकर आ जाएगा यानी बारबेक्यू होकर आ जाएगा। और बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जन्नतियों के कपड़ों में से, लिबास में से कोई कपड़ा दुनिया में पहन लिया जाए तो उसकी तरफ देखने वाला बेहोश हो जाए और निगाहें उसको बर्दाश्त न कर सकें, इतनी रोशनी और चमक दमक। اور جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان خوشبو سے بھر جائیں، زمین و آسمان کے درمیان کا خلا روشن ہو جائے، اور ان کے سر کا دوپٹہ وہ اس کی قیمت دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جنت کا جائزہ، تو بزرگ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت کی نعمتیں اگر دنیا میں بھیج دی جائیں تو آدمی خوشی سے مر جائے، اس لیے ان تمام صفات پر محنت کرنی ہے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ولی ہے، اور یہ آدمی اس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ ایمان، ہدایت، تقویٰ کی زندگی، سنت طریقے، اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کرنا، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، تواضع، اپنے آپ کو سب سے کم سمجھو، خدمت خلق، دوڑو لوگوں کی خدمت کرو، سخاوت، صدقہ، احسان، نفسانی خواہشات پر قابو، توبہ کرنا، دین پھیلانے کی کوشش کرنا، اور اہل اللہ کی صحبت، اچھے لوگوں کی باتیں سننا، تہجد، ذکر، قیام اللیل، سادگی، زہد کی زندگی، شکر اور صبر کی زندگی، توکل کی زندگی، ظاہری اور باطنی طہارت، اپنے عیوب پر نظر، استغفار کی کثرت، نیک اعمال میں دوڑنا، دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قافلہ جنت کی علامت لکھی، ملفوظات میں ہے۔ جنت والے کون ہیں، جنت کا قافلہ کون سا جا رہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اللہ سے ڈرے کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے نفس کو بری عادتوں سے، برے اعمال سے، برے افعال سے روک لیتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں، اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے۔ تو پھر آگے بتایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ شیخ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے خوف سے اکیلے ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، اپنی نظر اور دل اور جسم کی ہر طرح سے ہر وقت گناہ سے حفاظت کرتا ہے، ہر وقت اپنے اللہ پر نظر رکھتا ہے، اور اس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہے، اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، تو یہ ہے اصلی عاشق اللہ کا اور اصلی سالک تزکیہ نفس کا۔ اللہ اکبر، اللہ کے وعدوں کا یقین آ جائے کہ پورا دین جو ہے اس کے کہاں سے شروع کریں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثوں میں سے چن کے 4,800 حدیثیں سنن ابو داؤد کی کتاب لکھی، اس میں سے پھر چند حدیثیں منتخب کیں، جامع، کمپریہنسو، جوامع الکلم۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک جگہ ملفوظات میں نصیحت فرمائی کہ حدیثوں کے بڑے مجموعے میں سے چند حدیثیں نکالی۔ ایک تو انما الاعمال بالنیات، یہ اخلاص کے بارے میں ہے، عبادات کے ثواب کی حفاظت کرنا، اور ایک ہے زندگی کے لمحات کی حفاظت کرنا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ ترمذی کی روایت میں۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار فضول کاموں کو چھوڑ دے، تو اس میں آ گیا ٹائم مینجمنٹ پورا۔ اور ایک ہے معاملات کا دین، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بینہما متشابہات، ان درمیان میں شک و شبہ کی چیزیں ہیں، تو کامل جو تقوی والا ہے وہ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا کہ بھائی ان چیزوں میں گڑبڑ ہے، وہاں مت جاؤ۔ پھر ہے معاشرت کا دین، لوگوں سے کس طرح کے تعلقات ہوں، اکرام مسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसमें सारे जो है तवाजो और ट्रीटमेंट, दूसरों से कैसा मामला रखना, सब आ गया। तो हमारा दीन बहुत जामे, कॉम्प्रिहेंसिव, मुस्तनद, ऑथेंटिक है, और ये उसको मिलेगा जो अदब और तलब से चलेगा और सिफात लाने की मेहनत करेगा। इसलिए अल्लाह से मांगें आखरत की नेमतें, दुनिया की नेमतें, और इन तमाम मलफूजात और तालीम की हकीकत मांगें कि ये दिल में आ जाए, शैतान और नफ्स से हिफाजत हो, और आगे इन बातों को फैलाएं कि ये असल नॉलेज और इल्म और हकीकी जो बात है वो ये है। अल्लाह ताला हमें, आपको, हर एक को दुनिया आखरत की भलाइयाँ और इल्म का नूर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक, या अव्वल अल अव्वलीन व या आखिर अल आखिरीन व या ज़ल कुव्वति अल मतीन व या राहिम अल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اے اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ دین کی حقیقت اور اس کا روح، اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دیجئے. اے اللہ ایمان اور عمل صالح پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ شیطان اور نفس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ پوری امت میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو کامل شفا عاجلہ عطا فرمائیے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے. اے اللہ آخرت کے تمام منزلوں کو، اے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. اے اللہ حشر کے میدان میں عرش کا سایہ عطا فرمائیے. اے اللہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائیے. اے اللہ پل صراط پر سے آسانی سے بجلی کی تیزی سے گزار دیجیے. اے اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیے. اے اللہ، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ عطا فرمائیے. صحت، سلامتی، امن، چین، سکون عطا فرمائیے. تمام بیماریوں سے، خطرات سے حفاظت اور سلامتی عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے وقت میں، اسباب میں، جسم میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں رات کے آخری پہر میں، حرمین شریفین میں، اللہ والوں کی مجالس میں، ذکر کے حلقوں میں، اللہ کے راستے میں، رمضان میں، حج میں، حرمین شریفین میں، مساجد میں، اے اللہ جہاں جہاں رحمتیں اترتی ہیں ہم سب محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے انسان اور مخلوقات دنیا میں دعائیں کر رہے ہیں، جتنے لوگ دعا کر کے جا چکے اور جتنی قیامت تک دعائیں ہوں گی، اے اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرما لیجیے. ہمارے سننے والے حاضرین حاضرات، بھائی اور بہن، ہماری مائیں، ان کے دلوں میں جو جو، اے اللہ جو جو تمنائیں خواہشات ہیں، اے اللہ غیب سے اپنے خزانے ہمارے اوپر اتار دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.